उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये भारत के 8 राज्यों का वो समागम है जिसे हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ये राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, विविधता और अनूठी कलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन राज्यों में बसी संस्कृति और कला की भव्यता वास्तव में एक गुलदस्ते की तरह है, जहां ये राज्य अपनी विशेषताओं के रंगों और सुगंध के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाते हैं। हमारे कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी भी इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम आपको इन राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर, कला और उनके विकास से अवगत कराएं। हम हर रविवार आपसे मिलते हैं और हम हर रविवार आपको इस अद्भुत क्षेत्र की सैर कराते हैं और इन राज्यों के बारे में आपके साथ कुछ साझा करते हैं। आज के अंक में एक बार फिर आपके साथ मैं हूं कमल प्रजापति। आज भी बहुत कुछ विशेष लेकर हम आपके बीच आए हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सिक्किम से। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्षों के बाद फिर से शुरू हो रही है और जून से सितंबर तक ये यात्रा चलेगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो पहला पड़ाव या शुरुआत नाथुला दर्रे से होती है, इसलिए सिक्किम राज्य कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और इस यात्रा को देखते हुए सिक्किम में बहुत से इंतजाम किए जा रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को लेकर ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं और साथ में बीते सप्ताह पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश से कई गंभीर स्थिति और घटनाएं भी पैदा हुई और सिक्किम में भी भूस्खलन के चलते गंभीर स्थिति बनी और इस गंभीर स्थिति के चलते राहत बचाव कार्य भी जारी रहा और सफलतापूर्वक ये राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। तो इन दोनों खबरों पर आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता के पास। तो पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम में आज हम सिक्किम में हाल ही में हुई भूस्खलन की गंभीर स्थिति और राहत बचाव कार्य और साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा जुड़ रहे हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए। मानस, सबसे पहले तो हम आपसे भूस्खलन स्थिति और जो राहत बचाव कार्य सफलतापूर्वक किए गए हैं उसको लेकर इस बीते हफ्ते पूरी परिस्थिति पर आपकी टिप्पणी लेना चाहेंगे। क्या कुछ हुआ और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया?
जी कमल, देखिए ये हफ्ता यहाँ के लोगों के लिए और खासकर जो NDRF है, भारतीय सेना है, इंडियन एयरफोर्स है, BRO है और जो प्रदेश सरकार की जितनी भी ये एजेंसीज है जो राहत और बचाव कार्यों में लगे होते हैं, इन लोग के लिए बहुत ही एक ये प्रत्याहवान मूलक रहा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा। पहले बात तो ये है, ये मौसम है यहाँ का, क्योंकि एक विजिबिलिटी का इशू है और यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है, तो इस मौसम में जैसे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना बहुत ही एक चैलेंजिंग था। और पिछले 4-5 दिन से यहाँ से पाक्योंग से जहाँ पे लोग फंसे हुए थे, लासेन बोल के जगह है मंगन में, और मंगन के लासेन से और एक नजदीक वाला जगह है साटेन बोल के, वहां लासेन से वहां साटेन तक लोग को लाया गया। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, लगभग लोकल यहाँ के स्थानीय निवासी को जोड़ के 200 के आसपास लोग थे, लेकिन वही 200 लोगों को ही निकालने में 4-5 दिन लग गए। इसका मूल ये कारण था कि बहुत जगह पे यहाँ पे लासेन में भूस्खलन हुई थी, तो इसलिए जैसे मैंने पहले भी अपने समाचारों में बताया कि यहाँ पे लगभग 2-3 हफ्ता लग जाएगी ये फिर से रेस्टोर करने के लिए, तो ये स्थिति है। और फिर जो एक विजिबिलिटी की इशू है और खराब मौसम के कारण में बार बार इसको बाधित हुआ या लिफ्टिंग के लिए, लेकिन आखिर में 3-4 दिन की मेहनत के बाद शुक्रवार को यहाँ जितने लोग फंसे हुए थे टूरिस्ट, सबको यहाँ से लाए गए और किसी को बागडोगरा भेजा गया, किसी को NJP सिलीगुड़ी भेजा गया और यहाँ से सब लोग चले गए। इससे पहले और एक जगह है मंगन जिले के जिसका नाम है लासुंग, उसमें लगभग 1600 लोग थे लासुंग में, और वो लासुंग से 1600 लोगों को बाय रोड ही उन लोग को लाया गया, तो कुल मिलाकर लगभग 2000 लोगों को यहाँ से सही सुरक्षित तरीके से निकाला गया। लेकिन वही है कि जो मंगन जिले के लासेन और लसुंग में है, यहाँ अभी सड़क यातायात बहुत ही बाधित हुए हैं और यहाँ अभी लोगों को आने की अनुमति भी नहीं है, लेकिन ये दो जगहों को छोड़ के बाकी जितने भी जगह है, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि यहाँ सिक्किम में 200 से अधिक ऐसे जगह है जहां पे लोग घूमने आ सकते हैं, देखने आ सकते हैं। तो एक मान
बिल्कुल
लीजिए कि 200 जगह देखना एक बहुत ही अपने आप में एक एहसास होगा। तो बाकी जगह में देखने में कोई पाबंदी नहीं है, लोग आ सकते हैं।
तो इस बारे में कोई पर्यटन विभाग की ओर से सलाह या एडवाइजरी जारी हुई है, क्योंकि मौसम खराब है और इस तरह की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि आपने भी जैसा कि बताया बहुत प्रसिद्ध है सिक्किम पर्यटन के मामले में, तो
जी
पर्यटक बड़ी संख्या में आते ही हैं चाहे कोई भी मौसम हो। तो क्या कुछ
जी
सलाह इस वक्त है?
जी यहाँ के जो टूरिज्म विभाग के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है CS राव, कुछ दिन पहले उनसे मैंने बातचीत किया था, तो उन्होंने ये बताया कि बाकी जगह में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आइए, यहाँ का आनंद लीजिए, मौसम का आनंद लीजिए, यहाँ पे गर्मी नहीं है, बहुत ही सुहाना मौसम है अभी गैंगटोक में और बाकी जगह में भी पूरे सिक्किम में। लेकिन जो कुछ फॉर्मेलिटीज है, कुछ पासेज वगैरह है, तो लासेन और लसुन के लिए जैसे पहले बताया, ये दो जगह को छोड़ के बाकी जितने भी जगह हैं पूरा आनंद लीजिए, कोई इसमें पाबंदी नहीं है।
बिल्कुल। अब थोड़ी चर्चा हम कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि 2020 के बाद ये अब 5 साल बाद पहला मौका बनने जा रहा है और इसमें खास तौर पर सिक्किम एक बहुत बड़ा एक शुरुआती स्थान है जहां से ये यात्रा शुरू होती है। तो इसके बारे में बताएं, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ विशेष इंतजाम व्यवस्थाएं हैं?
जी, जैसे आपने बताया ये कोविड के कारण यहाँ पे कुछ रुका हुआ था, और जो नाथुला, जो हम लोग सभी जानते हैं जो सिक्किम घूमने आते हैं, वो एक ना एक बार तो नाथुला जाते ही है, ये इंडो चाइना बॉर्डर पे सटा हुआ है नाथुला, सब हम लोग देखने जाते हैं। तो वो नाथुला रूट से यहाँ से व्यवस्था शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। जैसे हम जानते हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा ये पूरा प्रबंध किया जा रहा है, और सिक्किम सरकार यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं, इसमें सिक्किम सरकार के साथ केंद्र सरकार के जितने भी संस्था है और लगे हुए हैं। अब यहाँ जो पहले फर्स्ट बैच है वो पहुंचेंगे यहाँ पर 15 जून को, इसी महीने के 15 जून को, और सिक्किम में गैंगटोक में वो लोग एक दो दिन रुकेंगे, फिर यहाँ से आगे जाएंगे, ये लोग सुमथांग बोल के जगह है, फिर 17 माइल बोल के जगह है, और वहां भी जितने भी जरूरी कामकाज है वो सिक्किम सरकार के देखरेख में अभी किया जा रहा है। तो वहां वो लोग 2 दिन रुकेंगे, और क्योंकि स्थिति को जिसको परखने के लिए, जिसको एक्लेमेशन कहते हैं हम लोग, वो 2 दिन रुकेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा ऊंचाई पर है, तो इस स्थिति से इन लोग को बारीक कराएंगे, अवगत कराएंगे। और अभी तक जो जानकारी मिली है 20 तारीख को शायद को एक बार केंद्रीय मंत्री आने की संभावना है, और वो केंद्रीय मंत्री द्वारा नाथुला से हरी झंडी दिखा के जो पहला जत्था है उनको यहाँ से विदा करेंगे। और इसके लिए साथ में मैं बता दूं कि खाने पीने के लिए ध्यान दिया गया है, और यहाँ से भी कुक लेके जाएंगे, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे, जैसे जिनको खान पान है उस हिसाब से व्यवस्था की जाएगी, और सब मेडिकल की व्यवस्था होगी। तो जितने भी यहाँ पे जरूरी कामकाज है सब देख रेख में किया जा रहा है कि लोगों को परेशानी ना हो। और इसे एक ये भी उम्मीद है कि जैसे लंबे समय के लिए चलेगा, और जो लोग आएंगे देश के विभिन्न हिस्सों से, इससे ये भी है कि यहाँ एक फिर आने वाले दिनों में टूरिज्म को एक थोड़ा सा एम्फेसाइज मिलेगा, क्योंकि जो लोग आएंगे जाके यही बोलेंगे कि जाइए सिक्किम गैंगटोक नाथुला घूम के आए, तो ये एक उम्मीद
जी
है कि एक आस्था के साथ यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसको भी देख पाएंगे, और आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी भी होगी।
बिल्कुल। तो यानी ये समझा जाए कि अब क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्री भी नाथुला पास पहुंचेंगे और टूरिस्ट तो
बिल्कुल
पहले पहुंचते ही हैं, तो काफी पर्यटकों की भीड़ और बढ़ने की संभावना मतलब इसमें समझी जा रही है।
बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि आस्था के साथ हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ के टूरिज्म को के लिए भी एक आपके लिए एक बूस्ट होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जो लोग आएंगे यहाँ से एक बार चल के जाए तो परिजनों को दोस्तों को, जैसे हम लोग आमतौर पे ये लोग कहते हैं कि चलिए वहां चले जाइए, मैं घूम के आया था, आपको भी अच्छा
जी जी
लगेगा,
जी
तो यही उम्मीद है। और जैसे सिक्किम के लोग हो, गैंगटोक के लोग हो, ये बड़े मतलब एक हॉस्पिटलिटी भी बहुत बढ़िया है, यहाँ लोग एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, लोगों को दिल से लगाने के तैयार रहते हैं, कोई हॉस्पिटलिटी नहीं है, तो बिल्कुल साफ मन, यहाँ जैसे जगह जो साफ है लोग दिल भी उतने ही साफ है। तो मुझे भी यही है, मेरा अनुभव यही कहता है कि यहाँ कोई भी लोग आए टूरिस्ट, और अभी सैलानी पूरा भरे हुए हैं गैंगटोक शहर में ही देख सकते हैं, तो इससे और एक अच्छा माहौल बनेगा आने वाले दिनों में।
धन्यवाद मानस इस विस्तृत जानकारी के लिए। अब हम आपको एक साक्षात्कार सुनवाने जा रहे हैं उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर, जो संस्कृति मंत्रालय के तहत संस्था है, जो संस्कृति के संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इस संस्था के निदेशक डॉक्टर प्रसन्ना गोगोई के साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह ने बातचीत की। इस बातचीत में विशेष तौर पर हम जानेंगे कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और कला के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं और किस तरह से ये संस्था और भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा देश भर में संस्कृति के उत्थान और संस्कृति और कला को पुनर्जीवित करने को लेकर प्रयासरत हैं। तो आइए ये विशेष बातचीत सुनते हैं।
खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक डॉक्टर प्रसन्ना गोगोई। डॉक्टर प्रसन्ना, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार
डॉक्टर प्रसन्ना, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सरकार का फोकस रहा है, हमेशा से सरकार ने महत्व दिया है वहाँ पे, तो वहाँ की जो कला और संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं पिछले 11 सालों में?
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो अष्टलक्ष्मी, जो 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के जो नाम दिया है, तो ये अष्टलक्ष्मी भारत के 500 से ज्यादा जाति जनजाति जितने हैं उससे आधे से ज्यादा उत्तर पूर्व में है। हर जाति, हर जनजाति के वेशभूषा अलग है, उनका खान पान अलग है, उनका वाद्य अलग है, उनकी बोली अलग है। तो हमारे प्रधानमंत्री के एक ही सपना है कि अगर हम पूर्व के तरफ, पूरब की तरफ देखें तो हमको नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ही देखना पड़ेगा। तो एक्ट ईस्ट प्रो नॉर्थ ईस्ट, ये एक उनका जो रवैया है, पॉलिसी है। तो इसके हिसाब से हमारे उत्तर पूर्व के जितने काफी सारा हमारा फेस्टिवल्स अभी दिल्ली जैसे शहर में मना रहे हैं, हम हैदराबाद, बेंगलोर, काफी काफी जगह में ऑक्टेव जैसे फेस्टिवल, ऑक्टेव ये 8 राज्य ऑक्टेव फेस्टिवल है, हम हर राज्य में हम लोग कर रहे हैं ताकि लोग जाने कि हमारे उत्तर पूर्व की कला संस्कृति क्या है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक ही सपना जो है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये उत्तर पूर्व से भी एक भारत श्रेष्ठ भारत, विविधता के अमृत महोत्सव, भारतीय कला महोत्सव, ये सारे कुछ हमारे उत्तर पूर्व के जितने भी कला है, जितने भी हमारे जाति जनजाति को, उनको एक अवसर मिला अपना कला दिखाने के राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। और जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम रहते हैं तो हमारे कलाकार को मौका मिलता है कि अपने उत्तर पूर्व को छोड़ के भारत के अन्य प्रांत में जाके अपने उत्तर पूर्व के कला और संस्कृति हमको दिखाने के लिए। उसके साथ साथ उत्तर पूर्व में हम जैसे पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से के कलाकार को बुला के हम उनको दिखाते कि पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण के कलाकार क्या परफॉर्मेंस। तो ये कल्चरल एमलगेशन, कल्चरल जो मोजाइक है, जो फ्यूजन है, ये भारत के अभी हम सब भारतीय है, सब एक है। हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रधानमंत्री के जो सपना है उसको हम पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है। और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे उत्तर पूर्व के कलाकार को बहुत सारा कुछ ये सब मौका मिल रहा है कि अपना कला को कैसे जिंदा रखे, कैसे हमको टूरिज्म के हिसाब से अगर हमारा कला संस्कृति रहेंगे तो हमारे जो टूरिज्म सेक्टर है इसको बढ़ावा मिलेंगे। तो यही एक हमारे अवसर है कि हमारा अपना उत्तर पूर्व को कैसे सुंदरता, जैसे प्राकृतिक सौंदर्य नहीं सांस्कृतिक सौंदरता भी हम जिंदा रख रहे हैं।
डॉक्टर प्रसन्ना, बतौर निदेशक NEJCC, आप ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में कलाकारों के साथ आप जाते रहे हैं, कार्यक्रम देते रहे हैं, और आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे युवा लोग किस तरीके से भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय है उसके कार्यक्रमों के साथ, NEJCC जैसे संस्थाओं के साथ उनसे जुड़ रहे हैं। क्या सरकार की कोई ऐसी प्रोत्साहन योजना भी है जिससे और युवा इससे जुड़ सकें?
भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा काफी सारे स्कीम्स है जो हमारे नए युवाओं, नए पीढ़ी को पहले छोटे से ही देते, जैसे CCRT स्कॉलरशिप है 9 साल से 14 साल तक है, फिर यंग आर्टिस्ट है, फिर आप इस स्कॉलरशिप से अन्य जो हमारे कला है, परिवेश कला है, वो हमारे विजुअल आर्ट से उसमें देते हैं, काफी सारे देते हैं। तो इसमें से फिर आप फेलोशिप कर सकते हैं, जैसे कुछ, जैसे हमारे जो विलुप्त कला है, जो वेनिसिंग आर्ट फॉर्म्स है, वेनिसिंग आर्ट फॉर्म्स को हम लोग कैसे जिंदा रख सकते। तो भारत सरकार के ये हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा हम लोग डॉक्यूमेंटेशन और फिनिशिंग आर्ट फॉर्म्स ये भी हम लोग करते हैं। फिर हमारे टैगोर फेलोशिप्स है, जहाँ टैगोर फेलोशिप बड़े बड़े हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स है वो काफी वो अलग अलग क्षेत्र में उन लोग काम कर सकते। तो भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा हमारे काफी सारे स्कीम्स है जो हमारे नए युवा, नए पीढ़ी, जो हमारे भारत के कला संस्कृति को जिंदा रखने में उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए मौका दिया जाता है।
जी, तो पिछले 11 सालों में हम देख रहे हैं कि युवाओं के लिए बहुत सारे नए अवसर आए हैं, तो उनका कला और संस्कृति के प्रति जो रुझान है वो कैसे बढ़ा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले एक दशक में जिस तरह से महोत्सव और कार्यक्रम हो रहे हैं, कला और संस्कृति का संरक्षण किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
हाँ, अभी क्या है, हाल ही में जो कोविड हो गया था, आपको मालूम है, इसमें हमारे युवा, हमारे स्कूल के बच्चे लोग काफी थोड़ा डिप्रेशन में चले गए थे, तो इनके लिए भारत सरकार ने कलोत्सव तैयार किया है, जो हम हर प्रांत के, हर स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो अपने कला को दिखा सकते हैं। तो इसमें से एक कंपटीशन होता है हमारे इंडिया लेवल पे, तो ये एक मौका है। दूसरी मौका क्या है, हमारे लोगों के बीच में जो हमारे नेशनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के कलाकार लोग, अभी आप पश्चिम के तरफ परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उत्तर के तरफ परफॉर्मेंस करते हैं भारत के, तो लोग फिर हमारे पूर्वोत्तर को देखने के लिए भारत के अन्य प्रांत से लोग आते हैं, तो ये एक कल्चरल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, जिसमें से जो हमारे जीवन शैली के बारे में काफी लोग को समझ में आ जाता है कि हाँ, उत्तर पूर्व के लोग कैसे हमारे जीते हैं, कैसे खाते हैं, इनकी जीवन शैली क्या है। हमारे उत्तर पूर्व के जितने भी लोग हैं वो बाहर जाके, जैसे आप गुजरात में गए होंगे, साउथ इंडिया में गए, तो वहाँ के जीवन शैली के बारे में जानने लग गए हैं। तो ये भारत में अनेकता में एकता, यही है भारत की विशेषता कि हमारे जितने भी कला है, जितने भी हर कला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यही हमारा आइडेंटिटी है, और हमको इनको जिंदा रखने के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से हर प्रयास करते हैं कि हमारे नए पीढ़ी को पढ़ाई के साथ साथ हमारी कला संस्कृति को कैसे जिंदा रखे, और इनको किस प्रकार से इनके लिए थोड़ा सा बड़े बड़े फेस्टिवल में इनको फिर इनका भी योगदान देते हैं। तो यही है हमारा खासियत है कि सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा हमारे काफी कल्चरल, ये हमारे जो प्रोग्राम से वो खाली भारत के लिए नहीं, विश्व दरबार में अभी फैला रहे हैं, हमारे नए पीढ़ी, नए जेनरेशन और आने वाले जेनरेशन के लिए भी हम लोग काफी डॉक्यूमेंटेशन कर चुके हैं, ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कर चुके हैं, विजुअल डॉक्यूमेंटेशन, ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन, ये काफी सारा डॉक्यूमेंटेशन आने वाले पीढ़ी के लिए हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा कर चुके हैं।
तो ये आपने विजुअल जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करी, ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन, इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है हमारी जेनरेशन को?
अगर एक कलाकार की आयु कितने होते हैं, इनके साथ अगर कुछ ऐसे कुछ कला है जो वो शेयर खाली दिखाने से नहीं होंगे, इसको लिखित रूप से, इसको विजुअली, उनको फोटोग्राफिक रूप से, या उनका कोई इंटरव्यू लेके रख लेते हैं, डिजिटलाइज कर देते हैं, तो ये सालों साल तक रहेंगे, कि ये इतने 100 साल हो, 200 साल तक लोग इनके ऊपर रिसर्च कर पाएंगे। अभी देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट में टैटो था, टैटो आर्ट फॉर्म जो था, जो बॉडी में ये करते हैं, तो ये अभी खत्म होने लग गया, तो लोग इसके ऊपर भी रिसर्च करने लग गए कि टैटो क्यों बनाते थे लोग पहले, उनका महत्व क्या है। तो अभी लोग काफी विदेश के लोग आके इनके ऊपर रिसर्च करने लग गए, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो वाद्य बजाते हैं उसके ऊपर रिसर्च करने लग गए। तो हम ये जो डिजिटाइजेशन करते हैं, जितने भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ये हमारे लिए नहीं, हम जिंदा है, हम देख ले, लेकिन अब 100 साल के बाद ये लोग नहीं रहेंगे, तो इनका जो कला है, इनका जिंदा रखने के लिए ही डिजिटाइजेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है
जी। और डॉक्टर प्रसन्ना, अगर हम देखें तो जो परंपरागत कलाएं हैं देश की, चूंकि आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं वहां पे बहुत सारी जनजातीय कलाएं हैं, उनको संरक्षित करने और उनको एक नया अवसर सरकार ने प्रदान किया है, और हम देखें तो उत्तर पूर्व के लिए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए सरकार का बहुत फोकस है, सरकार ने इसको पिछले 11 वर्षों में किस तरीके से इसे बढ़ावा दिया है।
अभी हम भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय का धन्यवाद देने चाहते हैं कि पिछले 11 साल में काफी सारा हमारे जो ट्राइबल, आदिवासी, फिर वो जितने भी है जनजाति के जितने कला है, हम खाली अपने राज्य लेवल पे नहीं, ये हमने राष्ट्रपति भवन में क्या है, राष्ट्रपति नीलायम ने क्या है, फिर अभी नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर पे भी किया है, हमारे जाति जनजाति के जो ट्राइबल आर्ट फॉर्म से उसको हम कर रहे हैं। अब इसी 11 साल में हमें नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल, ये सारे आदिवासी के लिए, जो उनका जाति, फिर वो उन्हीं के ट्राइबल का आर्ट फॉर्म्स, उनका खाना पीना, फिर वो कल्चरल आइटम्स, फिर आर्टिफैक्ट्स, ये काफी सारा अभी ये सरकार ने ये फेस्टिवल्स कर रहे हैं, तो हमें ट्राइफेड से भी, ट्राइबल वो मिनिस्ट्री, फिर ट्राइफेड से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है कि इस 11 साल में सरकार ने इतने सारे फेस्टिवल्स क्या है, ये जितने भी हमारे लोक कला है, हमारे जितने भी ट्राइबल जाति जनजाति के जितने भी कलाकार लोग हैं, इनको एक अवसर मिला है कि नेशनल प्लेटफॉर्म में जाके अपने कला, फिर अपने जो संस्कृति है, अपने जो जितने वे ऑफ लाइफ जो है, अपने जीवन शैली के बारे में वो प्रस्तुत कर रहे हैं। ये भारत अभी एक हो गया कि हर प्रांत के लोग अन्य प्रांत के कला क्या है, उनके आर्टिफैक्ट्स क्या है, उनके जीवन शैली समझने लग गए हैं और 11 साल में काफी कुछ अभी समझ रहे हैं लोग।
जी, और डॉक्टर प्रसन्ना, जो हमारे परंपरागत इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जनजाति इस तरह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इन सबको भी एक नया आयाम, सरकार की कोशिश है पिछले एक दशक में कि इनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, और एक कार्यक्रम देखने का मौका मिला आपके साथ जिसमें इस तरह की चीजें हमें देखने को, क्योंकि सारे जितने भी वहां पे इंस्ट्रूमेंट थे वो सब ओरिजिनल थे, वो सारे कहीं मतलब जो उनका उद्गम था वो उसी क्षेत्र से था, तो इसको सरकार किस तरह से प्रमोट कर रही है?
देखिए, अभी हमारे की वैष्णव जयंती जो गीत है राष्ट्रीय लेवल पे, जो हमारे सारे भारत के जो परंपरागत जो जितने भी वाद्य है, आप अवनद वाद्य, घन वाद्य, तत्व वाद्य, सुशील वाद्य, चारों वाद्यों को लेके देश के हर प्रांत से वाद्य लेके ये गीत में पेश किया गया, ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, हमारे देश में जितने भी वाद्य है हर वाद्य का एक महत्व है, और इसके ऊपर हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय की जो जितने भी हमारा सांस्कृतिक केंद्र है, हमारे साथ जोनल सेंटर से साथ ही क्षेत्र में हम लोग इसके ऊपर म्यूजिकल वर्कशॉप करते हैं, ताकि इन वाद्यों को कैसे बनाया जाए, इनको कैसे संरक्षित किया जाए, ताकि न्यू जनरेशन इन वाद्यों को कैसे सीखे। ये हर जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स लोग है इनके ऊपर जो रिसर्च कर रहे, सरकार की तरफ से इनको आर्थिक जो सहाय भी कर रहे हैं, फिर उनको एककालीन से उनको ग्रांट भी दे रहे हैं, ताकि हमारे वाद्य जी अगर रहेंगे तभी हमारा कला रहेंगे, तभी हमारा कलाकार रहेंगे, यही हमारा आइडेंटिटी है, यही हमारा पहचान है। तो सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से, हमारा भारत सरकार की तरफ से जितने भी हमारा कलाकार है इनको आर्थिक अवदान दिया जाता है कि अपनी कला को जिंदा रखिए, अपना वाद्य को जिंदा रखिए, अपना वेशभूषा को जिंदा रखिए, ताकि लोग हमारे भारत में आने से हमारे भारत का कल्चर क्या है, हमारे भारत का ये संस्कृति क्या है, ये अच्छी तरह से जाने।
जी डॉक्टर प्रसन्ना, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि प्राकृतिक सुंदरता के साथ सांस्कृतिक सुंदरता अष्टलक्ष्मी के जरिए, ऑक्टेव फेस्टिवल के जरिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए, विविधता का अमृत महोत्सव के जरिए, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए, विभिन्न प्रकार से भारत सरकार का पूरी तरह से प्रयास है कि जो कला और संस्कृति है देश की इसको बढ़ावा दिया जाए, और जो विविधता में एकता है हमारी, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको एक सूत्र में पिरोया जाए। तो आपने बहुत सारी जानकारी दी और आकाशवाणी से आप जुड़े, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
धन्यवाद आपको भी।
श्रोताओं, अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। हमारे संवाददाता राकेश डोले ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है कि अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने विदेश मंत्रालय के अधीन एक शोध संस्थान के साथ समझौता किया है। इस समझौते से राजीव गांधी विश्वविद्यालय को देश विदेश में एक पहचान मिलने की संभावना है। तो ये क्या समझौता है, आइए विस्तार से इस रिपोर्ट में जानते हैं।
शैक्षणिक सहयोग और शोध क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अरुणाचल प्रदेश स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने विकासशील देशों के लिए रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम RIS रीस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम विदेश मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख नीति शोध संस्थान है। यह समझौता नई दिल्ली में 3 और 4 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हुआ। इस सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और पारस्परिक विकास, समानता तथा सहयोग पर आधारित विकास साझेदारी के नए मॉडल पर चर्चा की गई। यह समझौता ज्ञापन G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल के तहत एक अहम उपलब्धि है। इस पहल में देश भर की 101 विश्वविद्यालयों को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें से केवल 21 को रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए चुना गया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय का चयन उसकी भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रीय राजधानी से दूरस्थ क्षेत्र में होने, G20 कार्यक्रमों में सफल भागीदारी और छात्रों की सक्रिय भागीदारी जैसे मानदंडों के आधार पर हुआ। यह सहयोग राजीव गांधी विश्वविद्यालय को ग्लोबल साउथ से संबंधित नीति शोध, प्रशिक्षण और शैक्षणिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगा। इस समझौते का एक प्रमुख अंग नेत्रा नॉर्थ ईस्ट ट्रेनिंग एंड रिसर्च एडवोकेसी पहल है, जिसका उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में शोध पारिस्थितिकी और अकादमिक ढांचे को सशक्त बनाना है। यो सम्झौता ज्ञापन विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय शैक्षणिक परिदृश्य में बढ़ती प्रतिष्ठा और पूर्वोत्तर भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने की इसकी राजनीतिक भूमिका को रेखांकित करता है। इसके साथ ही राजीव गांधी विश्वविद्यालय उन चुनिंदा संस्थानों की कतार में शामिल हो गया है जो देश और विकासशील दुनिया में शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के बीच गहरे संबंध स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।
और अब हम आपको लिए चल रहे हैं नागालैंड। नागालैंड में हाल ही में यानी 4 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर नेफ्यू रियो ने नागालैंड शिक्षा परियोजना के तहत 9 लाइट हाउस कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। तो आइए हमारी संवाददाता मैरी से ये विस्तार से जानते हैं कि इस परियोजना के तहत क्या कुछ हुआ है।
नागालैंड के मुख्यमंत्री डॉक्टर नेफ्यू रियो ने 4 जून को नागालैंड एजुकेशन प्रोजेक्ट द लाइट हाउस नेक्टर के तहत 9 लाइट हाउस स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की आधारशिला रखी। कोहिमा में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि राज्य के शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हो रहे हैं। नई लॉन्च की गई लाइट हाउस स्कूल कॉम्प्लेक्सेस चुमुकी दिमा, फैक, किफिरी, जुदभोतो, शमातोर, नोकलाक, लोंगलैंड, मोकोकचुंग और दिमापुर जिलों में सरकारी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्थित है। इसके साथ ही राज्य में वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित लाइट हाउस स्कूल कॉम्प्लेक्स की कुल संख्या 16 हो गई है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मेरी, आकाशवाणी समाचार, कोहिमा।
महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलन तीर्थ कत युग धरी आहि से प्रकाशी समन्वय अर्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलन तीर्थ कत युग धरी आहि से प्रकाशी समन्वय अर्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र।
श्रोताओं, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है
9289094044। কেই বংশতে শংকৰ দেউ ইয়াতে জনমিলে।
हर सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
मोरूर देखरे आजान फकीरे मधुर जिकिर रसिले दिल्लीर दिलवारे आही हस्ती पुठी आकिले पंच नदीर तेग बहादुरे धर्मर हेतु गढ़िले সমন্বয়ার দেখুয়ালে কত প্রকাশ স্ফূর্ত। মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র।
আলেখ ও সংকলন কমল কুমার প্রজাপতি, প্রস্তুতি সহায়ক মোহিত সিং।
উত্তর পূর্ব অদ্ভুত রোমাঞ্চক আর মনোহারী উসকি ছটা কো সমেটতি রেডিও ডায়রি জিসকে পন্নে খুলতে হ্যায় हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।